एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इकलौती बहन करवा से बहुत प्रेम करते थे, अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके आई तो एक दिन शाम को सभी भाई भोजन करने के लिए बैठ गए। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसे छलनी में रखकर बहन के पास वापस आ जाता है और कहता है, देखो बहन चांद आ गया, अब तो खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लीजिए। भाभियों ने कहा, नहीं ये चांद तो तुम्हारा आया है करवा, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास ग्रहण करती है उसे छींक आ जाती है, और जब दूसरा ग्रहण करती है तो उसमें बाल निकल आता है। इसके बाद जैसे ही तीसरा ग्रास ग्रहण करने जाती है उसके ससुराल से समाचार आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सत्य बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने दीपक जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल आया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सत्य जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है तो यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती, मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हट और पति के वियोग में शमशान चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा के बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते। जब सब घर चले जाते हैं तब करवा अपने पति को लेकर दूर कहीं झोपड़ी में रहने लगती है और अपने मृत पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करती है। एक साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। एक वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लेकर आए, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस लाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को पुनः वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था, उसी ने पेड़ पर दीपक जलाकर करवा से झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव को पकड़कर रोने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीर कर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति को ग्रहण कराती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो उठता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया है और सदा सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार माँ सभी स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का वरदान दें।